राजवंशी बंगले का नज़ारा उस रात कुछ अलग ही था। बाहर आंगन में पुराने पीपल के पेड़ से हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। घने सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। अंदर विशाल ड्राइंग रूम में रोशन झूमर बुझ चुका था, बस दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक उस मौन को तोड़ रही थी। ऊपर पहली मंजिल पर अखिल अपने बड़े से कमरे में था। गहरे लकड़ी के फर्नीचर, भारी पर्दे और कमरे के बीचों बीच रखा विशाल पलंग, सब कुछ उसके अकेलेपन को और गहरा बना रहे थे। अखिल उस रात चैन से सो नहीं पा रहा था। बिस्तर पर लेटकर वो बार बार करवटें बदल रहा था। तकिए पर सिर रखता, फिर उठकर बैठ जाता। कभी आंखें बंद करने की कोशिश करता तो कभी बेचैनी में पंखे की ओर देखने लगता। उसके मन में अजीब सी खींचतान थी। क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ, किस लिए? बहुत दिनों से रैना से बात नहीं की, देखा भी नहीं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही क्या है? उसने खुद से सवाल किया और तुरंत खुद ही जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे उसकी क्या ज़रूरत, उसकी आवाज़ तक सुने बिना मैं रह सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके विचार खुद से टकरा गए। रह सकता हूँ सच में? तो फिर ये बेचैनी क्यों है? रात के इस पहर उसकी याद क्यों सताती है? क्यों उसका चेहरा आंखों के सामने बार बार आ जाता है? वो झुंझलाकर उठ बैठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कभी खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे में झांकता, कभी अलमारी के पास रुककर फिर पलंग की ओर लौट आता। उसके कदमों की आहट और घड़ी की टिक टिक कमरे में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। अनजाने में कॉल। थककर वो पलंग पर बैठ गया और मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखने लगा। यूं ही स्क्रॉल करते करते उसका अंगूठा अनजाने में किसी नाम पर रुक गया। रैना। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। नहीं नहीं, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। लेकिन तभी उंगली स्क्रीन पर फिसल गई और कॉल बटन दब गया। कुछ पल को उसकी सांसें थम सी गईं। वो घबराकर स्क्रीन देखने लगा। ओ नो, कॉल लग गई। रात के करीब 11:55 हो रहे थे। अखिल कॉल कट करना चाहता था लेकिन उंगलियां जैसे थम गई थीं। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से एक नींद भरी लेकिन चौंकी हुई आवाज़ आई। हेलो। अखिल का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो, उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, रैना। उसका नाम सुनते ही रैना की नींद पूरी तरह से खुल गई। वो बिस्तर पर सीधी बैठ गई। अखिल, इतनी रात गए तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? अनकही खामोशी। अखिल चुप रहा। होंठ खुले थे लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। कमरे की खामोशी अब उसके मोबाइल से निकलकर रैना के कमरे तक पहुँच चुकी थी। कुछ देर बाद वो हकलाते हुए बोला, वो दरअसल गलती से कॉल लग गया। रैना ने भौहें से कोड़ ली। गलती से? रात के 11:12 गलती से कॉल लग गया? अखिल तुम मजाक कर रहे हो क्या? अखिल ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। नहीं सच में, मैं तो बस फ़ोन देख रहा था, पता नहीं कैसे। रैना ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन देखी। हाँ, कॉल सचमुच उससे आया था। वो कुछ पल चुप रही, फिर गहरी आवाज़ में बोली, ठीक है, अगर गलती से हुआ तो रहने दो, लेकिन एक बात याद रखना, रात के सन्नाटे में ऐसे फ़ोन इंसान का दिल और ज़्यादा बेचैन कर देते हैं। उसकी बात सुनकर अखिल के भीतर कुछ हिल गया। वो जवाब देना चाहता था लेकिन खुद पर काबू पा गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं उसके सामने अपने दिल का हाल क्यों रखूं? फिर भी उसकी ज़बान ने धोखा दे दिया। रैना, तुम ठीक हो ना? रैना एक पल को चौंकी। हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। दोनों के बीच खामोशी पसर गई। घड़ी की टिक टिक और सांसों की आवाज़ ही अब फ़ोन पर सुनाई दे रही थी। रैना ने आखिरकार कहा, अखिल तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अखिल हंसने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। नींद? हाँ शायद नहीं। रैना का दिल भी तेजी से धड़कने लगा लेकिन उसने आवाज़ को स्थिर बनाए रखा। तो जाओ, कोई किताब पढ़ लो या म्यूजिक सुन लो, लेकिन इस तरह बेचैन होकर रात को फ़ोन मत किया करो। रैना ने धीरे से कहा, अगर म्यूजिक से नींद आती तो शायद तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे चैन क्यों मिल रहा है? ये सुनकर रैना पूरी तरह से चुप हो गई। उसके होंठ कांप उठे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सन्नाटे का संवाद। दोनों तरफ सन्नाटा था। अखिल की सांसें भारी हो रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है अब रखता हूँ, गुड नाइट। रैना ने धीमे स्वर में जवाब दिया, गुड नाइट अखिल। अखिल ने गुड नाइट कहकर जैसे ही कॉल कट करने की कोशिश की, उसके अंगूठे ने स्क्रीन पर हल्की सी हरकत की लेकिन उसने बटन दबाया ही नहीं। रैना ने भी गौर किया, क्या हुआ, रख क्यों नहीं रहे फोन? अखिल ने गहरी सांस ली फिर धीमे स्वर में कहा, रैना मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और बात करो। प्लीज? रैना हंसी दबाते हुए बोली, आप जैसे लोगों के मुंह से प्लीज सुना तो बहुत मुश्किल है और मुझे तो ये बड़े आराम से मिल रहा है। अखिल हल्के से मुस्कुराया, तो मान लो कि ये तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव है। रैना ने तकिए पर सर टिकाते हुए कहा, अखिल तुम बड़े अजीब हो, दिन भर तो अकड़ कर चलते हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो और अब आधी रात को बच्चे जैसी जिद कर रहे हो? अखिल ने जवाब दिया, शायद तुम्हारे सामने मैं अकड़ नहीं दिखा पाता। रैना एक पल को चुप हो गई, उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे के किनारे को मरोड़ने लगी। तो अब क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊं ताकि तुम्हें नींद आ जाए? अखिल ने हल्की हंसी में कहा, अगर तुम सुनाओगी तो शायद मैं कभी सोना ही ना चाहूं। रैना का दिल धक धक करने लगा। अखिल, तुम कभी कभी हद से ज्यादा बातें कर जाते हो। कभी कभी? अखिल ने तुरंत कहा। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगता? रैना ने उसकी बात टालते हुए कहा, देखो रात बहुत हो गई है, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करते रहोगे तो कल मेरी आंखें सूजी हुई लगेंगी और सब हंसेंगे। अखिल ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं सबको कह दूंगा कि ये मेरी वजह से है, फिर कोई हंसेगा नहीं बल्कि जलेंगे। रैना का चेहरा लाल हो गया, उसने हल्की झुंझलाहट में कहा, अखिल तुम ना सच में बहुत पागल हो। हाँ, लेकिन ये पागलपन सिर्फ तुम्हारी वजह से है। फोन के उस पार एक गहरी खामोशी छा गई, दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे से मिल रही थीं, और उस रात दोनों को समझ आ गया, ये खामोशी भी एक तरह का संवाद है।